लफ्ज़ ज़ाहरा अगर आप अरबी ज़बान में देखें, लफ्ज़ी तर्जमा क्या होना चाहिए ज़रा आप गौर करें, मा ज़ाहरा मिनहा, जो उसमें से ज़ाहिर हो जाए। और अगर आप ज़ाहरा को कर दें अज़हरा मिनहा, आपने अभी बाब नहीं पढ़े, बाब इफ़ाल जो होता है ना उसमें दूसरा करता है, जैसे अनजला अफअला। ज़ाहरा का मानी है जो खुद ही ज़ाहिर हो गया, औरत ने करना नहीं चाहा, और अज़हरा क्या है, जो औरत ज़ाहिर करेगी, खुद ज़ाहिर करेगी, वो है चीज़ मुख्तलिफ। अब आज आप देखिए कि इससे हम अगर मुख्तलिफ मानी समझें तो पहली बात क्या है कि ज़ाहरा मिनहा हर वो चीज़ इन सब में जो हमने अभी तस्करा की कि जिसको छुपाना मुमकिन ही ना हो। कोई औरत अपना कद छुपा सकती है? डेल डोल का भी पता चल ही जाता है ना, एक जुमला लिख लें, औरत जितने मर्जी पर्दे में चली जाए, 7 पर्दों में आप एक औरत को छुपा के बाहर निकालेंगे ना लपेट के, उसकी खूबसूरती है तो कहीं ना कहीं से ज़रूर छलकेगी। बस आप देखिए, एक औरत है उसकी आंखें ब्लू हैं, अब क्या करे, वो उसकी नीली आंखों से ना देखे, कहीं ना कहीं देखने वाले को ज़रूर पता चलेगा कि इस निकाब के अंदर एक खूबसूरत औरत है। हाथ खुले रहेंगे तो हाथों से दिखेगा ना। फिर आप देखिए, क्या वो आंखों पे पर्दा डाल ले और वो गिल्ट में चली जाए कि अल्लाह आपने मुझे खूबसूरत आंखें क्यों दी। किसी की पलकें खूबसूरत हैं तो वो छुप सकती हैं। इवन आप पूरी कोशिश भी कर लें आंखों को छुपाने की, उसके ऊपर कपड़ा डाल लें, एक आंख भी छुपा लें, जैसे कि एक रिवायत में मिलता है कि सहाबियत एक आंख से देखा करती थी, पता फिर भी चलेगा। असल चीज़ जो है ना बताने की, वो क्या है कि मा ज़हरा मिनहा, जिसको छुपाना मुमकिन ही नहीं। आपने कोट पहना हुआ है, उसके कोट का कपड़ा, उसका रंग, उसकी जो चीज़ें हैं दूसरी हैं, वो सारी चीज़ें उसको तुम छोड़ दो, जो कोशिश के बावजूद भी तुमसे ना छुपे उसको तुम ना रखो, बाकी चीज़ों को तुम छोड़ दो। अब आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ ये बात करके थोड़ी सी आसानी कर दी, बल्कि बहुत सारी आसानी कर दी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है लफ्ज़ पर्दे के ऊपर, क्या करें, कैसे करें, कितना पहने, और ये वो वजह है कि जिसकी वजह से आज बहुत सारी ख़वातीन को पर्दा करना मुश्किल हो गया। मैं चाहूँगी कि इस आयत का अगला हिस्सा साथ लूँ, उसको भी मिला के, तो फिर एंड पे आपके साथ इसके ऊपर एक ओवरऑल थोड़ा सा डिस्कशन करूँगी कि असल मुराद क्या है, मुंतहाए नज़र क्या है, उसको इंशाल्लाह देखेंगे। अगला जुमला समझ लीजिए, वल यदरिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रहें। यदरिबना दरोबा यदरिबु से डालना फेंकना, जुयूब का लफ्ज़ जैब की जमा, जेब होती है ना ये जो हमारे यहाँ मर्दों के कपड़ों में, वो भी इसी से है, वो अक्सर सीने पे होती है ना, इसलिए उसको जेब कहते हैं। तो जुयूब सीनों पे, असल में दौरे जाहिलियत का एक कल्चर था कि उनकी औरतें सर के ऊपर कपड़ा तो पहनती थी लेकिन उसको पूरे सर में लपेट के पीछे चुटिया के साथ बल दे देती थी, जिसकी वजह से गर्दन, कान और सामने से सीना खुला रहता था। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये नहीं कहा कि पहनो दुपट्टे, बल्कि कहा ओढ़ो दुपट्टे। इस लफ्ज़ पे आप गौर करें, यहाँ लफ्ज़ आया है खुमर, खुमर खिमार, पीछे हम पढ़ चुके हैं, अलखमरु मा खामर अल अक्ल, शराब को भी कहते हैं। तो खिमार हर वो चीज़ जो दूसरी चीज़ को छुपा ले, ढांप ले। ये नहीं कहा कि खिमार पहन लो, बल्कि कहा कि खिमार ओढ़ लो सरों पर। देखिए कि आप अपने बच्चों को कहते हैं बेटा मोज़े पहन लो, क्या आप ऐसे कहते हैं बेटा मोज़े पहन लो पाँव पे? आप कहते हैं दस्ताने पहन लो, आप ये कहते हैं कि दस्ताने पहनो हाथों में? क्यों ज़रूरत पड़ी भी खुमुरी हिन्ना अला जुयूबी हिन्ना की? बड़ा काबिले गौर नुक्ता है। कई लोग कहते हैं कहाँ है दुपट्टा, इस्लाम में दुपट्टे का तो लफ्ज़ ही नहीं है, ये तो कल्चरल चीज़ें हैं, यहाँ है दुपट्टा। खुमुर खिमार कहते हैं सर के कपड़े को, मोटा कपड़ा जो छुपा ले, क्योंकि जिसने छुपाना है वो मोटा ही होगा तो छुपाएगा ना। तो खिमार होता सर का कपड़ा है, लेकिन उसको लेने का तरीका सिखाया जा रहा है यहाँ। जुयूब क्या है कि अपने सर के कपड़े को अब सीने पे लगाओ कि सीना भी छुपे। क्या अदब सिखाया जा रहा है इसमें कि जितनी बालों को छुपाने की फ़िक्र करते हो ना, उतनी कानों में पहने हुए टॉप्स को और लंबे लंबे कांटों को भी छुपाने की फ़िक्र करो, उतनी गर्दन में पहने हुए नेकलेस की भी फ़िक्र करो, उतने अपने गले पे बनी हुई कढ़ाई को छुपाने की भी फ़िक्र करो। आज आप देखिए, पर्दे के नाम पे भी जब हम स्कार्फ या हिजाब पहन लेते हैं, छुपता कुछ भी नहीं, वही छुपते हैं जो बाल वैसे ही सफ़ेद हो चुके थे, चलो अच्छा सर पे एक पटका बांध दिया। यकीन करें, आज के दौर में जो हिजाब के नाम पे भी हिजाब पहना जा रहा है, वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे सर में दर्द हो तो कस के दुपट्टा पीछे बांध लो। पहले दौर में खवातीन घर में काम जब करती थी, अब तो माशाल्लाह। लेकिन वो मुझे याद है, आज भी आप जाएं अपने मुल्कों में तो मासियां जो काम करती हैं, सफाई करते हैं, को पूरे बालों को लपेट के पीछे बांध लेती थी, लेती हैं ताकि बार बार दुपट्टा उनको तंग ना करे। तो जुजू भी हुन्ना सीनों पे डाले, आज का खुमर कहाँ है? अब आप बताएं क्या छलनी से पतला दुपट्टा खुमर होगा, और डोरी की तरह रस्सी बंधा हुआ बटा हुआ दुपट्टा और खुमर होगा? तो यहाँ खुमर की बात हो गई, अल्लाह ताला ने उसको फरमा दिया कि अच्छे तरीके से पहनो, सीने छुपे, आज क्या होता है? आप देखिए कि हमारी तो रिवायात में यही था कि बाप दादा नाना चचा फुफा फुफा वगैरह को तो छोड़े, कम अज़ कम बाप चचा और जो करीब के रिश्तेदार थे हर वक्त घर की औरतों के सर पे सवार होते थे। बाप जो सेहतमंद बाप होते हैं ना, वो अपनी बेटियों को इस तरह छुपाते हैं जैसे लूलू मखनून, और सिख पेरेंट्स होते हैं जो अपनी बेटियों को यूं बना के पेश करते हैं कि जैसे उनको जाना है। एक बच्ची थी वो तकरीबन रोने वाली थी कि मेरे अब्बू कह रहे हैं कि अब तुम बाहर जा रही हो तो तुम वहां जाके ये दुपट्टे शुपट्टे नहीं लेके जाओगी साथ। ये कहाँ से हुई? जिन्होंने खुद ना पहना उन्होंने दूसरों को भी ना पहनने दिया, और इतना बदनाम कर दिया हमने इस चीज़ को, इन चीज़ों को, कि जिसकी वजह से सारों को ही हमने परेशान कर दिया। आप देखिए कि आपके जहनों में
हाँ
बहुत सारे सवाल उठने चाहिए और उठ भी रहे होंगे कि पर्दा हिजाब क्या होता है। तो हम ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब भी पर्दे की आयतें आती हैं तो ख़वातीन के अंदर क्या रिएक्शन उठता है। मर्दों को एक तरफ कर दीजिए, सिर्फ औरतें ही जब उनको पर्दे का हुक्म दिया जाता है ना तो जहनों में बहुत सारे सवाल होते हैं। आपके भी जहनों में होंगे यकीनन बहुत सारे, कैसा पहने, काले रंग का ही पहने, मोती लगा लें, सितारे लगा लें, सलमे लगा लें। तो इसके लिए मैं आपको दावत दूंगी, अगर आप सिर्फ सुनना ही चाहें तो सुनते ही रहें, मैं आपकी मदद करती हूँ, कि आज की खवातीन के लिए जो पर्दा है ना, वो बनी इसराइल की गाय बन गई है। पढ़ चुके हैं सूरत बकरा में आप गाय का वाक्या, मैं अब आपके सामने ये पर्दे के जिम्मे में पढ़ती हूँ, फिर आप देखिएगा कि आज हमारी गाय कैसी है। वैसे मुझे पढ़ना नहीं आएगा, अगर कोई बड़े एक्शन के साथ पढ़ के सुनाए तो फिर आप वाकई सोच सकते हैं कि आज औरतें पर्दे को कितना बड़ा इशू बना चुकी हैं। ये सूरत बकरा की आयत नंबर 37 है। वइस्काल मूसा अली कौमी ही इन अल्लाह या मुरुकुमन तस्बहू बकरा, जहाँ गाय है उसको पर्दा कर लें, कि बेशक अल्लाह मूसा को कहता है कि कौम को कह दो कि ये पर्दा करें, तो कालू अतत्तखिज़ुना हुजूबा, क्या मतलब हमसे मजाक कर रहे हैं, पर्दा करूं मैं करूं, इट्स पॉसिबल? हाँ, काल आउज़ु बिल्लाहि अनकूना मिनल जाहिलीन, मूसा ने कहा तौबा करो मैं तुम्हारी इन हरकतों से अल्लाह की पनाह में आता हूँ। फिर खवातीन बोलती हैं कालू दलना रब्बा का युबय्यिन लना माहिया, अच्छा बताओ फिर अल्लाह से कैसा हो, क्या करें, किस रंग का पहने, क्या हो, कैसा हो? काल इन्नहा यकूल इन्नहा बकरतु ला फारिदु वला बिक्र, का अच्छा ना ये बहुत लंबा हो, ना बहुत ऊंचा हो, ना बहुत बड़ी उम्र का, ना बहुत पुराना पहनो, ना नया पहनो, अवानुम बैना ज़ालिका, मीडियम दर्जे का पहन लो। अच्छा आप कहते हैं अच्छा जी ये बुतीक का पहन सकते हैं, अच्छा फिर वो पाकिस्तान का पहने, अच्छा कुवैत के बाय पहन सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, सवाल उठते हैं ना, वही बात है। अच्छा ये बता दिया फफलु मातु उमरून, जाओ पहन लो जो पहनना है। तो फिर आगे कहते हैं कालू दलना रब्बा का युबय्यिन लना मा लौनुहा, अच्छा ये बताएं किस रंग का पहने, काला ही पहने, नीला ही पहने? काला इन्नहु यकूल इन्नहा बकरतुन सफराउ फाकि लौनुहा तसुरुन नाजरीन। अब इसका जवाब मिल गया, अच्छा भी पहन लो, जिस दर्जे पे खड़े हो वहां का पहन लो, इसको बाद में मैं चंद सवालात में आपके सामने रखूंगी, यानी रंग को छोड़ो बस कर लो जो काम करना है। अच्छा कालू दलना रब्बा का युबय्यिन लना मा हिया, ये बताएं किस कपड़े का बना है, किस कपड़े का, सॉफ्ट हो, नरम हो, क्या? इन्नल बकरा तशाबह अलैना इन्नल पर्दा तशाबह अलैना, पर्दा बड़ा मुश्तबे हो गया, अच्छा चेहरा भी छुपाएं कि नहीं, क्या करें? बस इस सवाल का जवाब दे दें इन्ना इंशाअल्लाह ला मुख्तदून। अब अगली आयतें हम खुद पढ़ लें। आज औरतों का हाल यही नहीं बन गया, इतने उजर, इतनी बातें, कुछ पर्दे का हुक्म सुन के हैरान होते हैं, तब तक ही सुना खुशुबा, मैं आई एम इतने बड़े अफसर की बीवी, इतने ग्रेड की मालिका, ये है वो है। कुछ लोग इसका नाम सुन के मजाक उड़ाने लग जाते हैं, अच्छा मैं करूं क्या करूं, किसी को तो यकीन ही नहीं आता कि ये हुक्म अल्लाह दे भी सकते हैं, क्योंकि उसने इतना हुसन बनाया, वो कहता है अब देखो है देखने की चीज़, बार बार देखो। लोग कहते हैं जब अल्लाह ने हुसन बनाया तो फिर क्यों ना देखें, तो उनको क्या कहेंगे कि जिसने हुसन बनाया औरतों में उन्होंने नहीं कहा कि ना देखो। कितने मर्द हैं जो इस तरह का मजाक उड़ाते दिखते हैं, और लोग कहते हैं कहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखा है। आप सोचें कि आज ऐसे लगता है कि वो चीज़ जो कभी हमारे लिए क्वेश्चन ही नहीं थी, सब अपनी नानियों दादियों को, चले आज से एक जनरेशन छोड़ के उसे पिछली पे जाए, पहनती थी बुरके खवातीन। ठीक है, उस दौर में शटल कॉक का रिवाज था, वो पहन लेती थी। क्या किसी के लिए ये कोई नई बात है? कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसे भोले बनते हम, ऐसे वो अरब तो ये कहते, वो अजम तो ये कहते, अच्छा ये करें। और सबसे बड़ी बात है, मेरे शौहर को बुरा लगता है। तो ये बताएं आप खुद कैसी लगती हैं शौहर को? शौहर को आपका पर्दा तो बुरा लगता है, आप बताएं आप खुद कैसी लगती हैं? इसकी कोई फिक्र नहीं। जब आप बाजारों में जाती हैं, जब आप उसकी मेहनत की कमाई को हजारों लाखों को ऐसी उड़ा के आती हैं, आप शौहर से पूछें चले मेरे पर्दे को तो छोड़ें, वो अच्छा नहीं लगता, मैं कैसी लगती हूँ, पूछ के आए कल, फिर देखेंगे वो आपको कैसे करते हैं। इतने मसले, इतनी बातें, अल्लाह ताला ने हमें तरीका बताया कि देखो ऐसी बात नहीं है। याद रखें कि पर्दे का मौजू ऐसा मौजू है, जितने आप सवाल पूछेंगे, जितनी बहसें करेंगे, जितना इसको हवा बनाएंगे, उतनी शिद्दत की मुखालफत आएगी और उतना मुश्किल होगा। अल्लाह सुबहाना ताला ने इसको इतना जेन्युइन रखा है। हर औरत या लड़की नंबर एक उम्र के मुख्तलिफ मरहले में होती है। एक लड़की नई नई हिजाब कर रही है, 11 साल की है, 12 की है, उसको अच्छा लग रहा है माँ को देखकर। अगर उसने पिंक कपड़ों में पिंक हिजाब पहन लिए, क्या कयामत आ गई? कोई बात नहीं, पहनने दीजिए, हो जाएगा, वक्त की बात है। एक औरत है, वो पिछले 10 20 15 साल से वाय में है, उसके और एक नई आने वाली में फर्क होगा। आज एक और भी ताना देते हैं, कहते हैं हाँ जी ये वाय भी अब सिर्फ इनके कपड़े ही हैं, इतनी शो में देखो इतने मोती सारे लगा रहे हैं, करते हैं ना लोग। हर बंदे का एक अपना हाल होगा। कुछ औरतें उनके शौहर पसंद ही नहीं करते, उनको पता है शिद्दत की मुखालफत होगी जिस दिन हमने अपने आप को अबाय में छुपाना है। अगर बिलफर्ज वो उसको कुछ थोड़ा सा चमक वाला या थोड़ी सी उसमें कोई लैस लगा लेती हैं, कुछ मर्दों को तो काले बुरके से बड़ी चिढ़ होती है, ये काला तंबू उतारो, वो पहन ले स्किन, वो पहन ले ग्रे, वो पहन ले ब्लू, क्या फर्क पड़ेगा? ये मैं आपको नहीं सबको कह रही, एक्सेप्शंस। डॉक्टर्स दवा हर एक को मुख्तलिफ की देते हैं, किसी की मजबूरी होती है, किसी का शौक होता है, कोई ज़रूरतन करता है, कोई ऐसे करता है, स्टेप बाय स्टेप तो करें। मैं इसको हमेशा समझती हूँ इस तरह से कि ये स्टेप्स हैं। जैसे मैंने एक दफ़ा एक नॉन मुस्लिम को भी जवाब दिया था, जो किसी मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज से पहले असाइंड थी पहरा देने के लिए, तो जुमे की नमाज़ पढ़ के जब मैं निकली तो मैंने उससे बात की, ड्रिंक वगैरह दिया, तो उसने मुझे एक सवाल किया था। कहने लगी कि मैं उस वक्त से देख रही हूँ तो बहुत सारी सिस्टर्स भी मस्जिद में जा रही थी, बट दे ऑल वॉज डिफरेंट फ्राम यू, क्योंकि मैं निकाब में थी, मोस्टली वहाँ लोग हिजाब में होते थे। तो क्या ये तुमको यहाँ प्रीस्ट हो या नन हो या क्या, जैसे हमारे तसव्वुर होता है, तो वाई इज़ दिस डिफरेंस? तो मैंने उसको एक जुमला बोला था, वही आपको बोलती हूँ। मैंने उसे कहा डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग इश्यू, ये सिर्फ स्टेप्स हैं। कुछ लोग अभी पहले स्टेप पे हैं, कुछ दूसरे पे, यानी आप समझ लो कि इट्स ओके और द बेस्ट का एक मरहला है। आप शुरू तो करें, आप कुछ नहीं करते, आप कहते हैं आप गले में दुपट्टा नहीं लेते, लेना तो शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी, फिर खोल के ले लें, फिर उसके बाद सर पे ले लें, फिर उसको सिले हुए स्काफ में कर लें, हिजाब में कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त आएगा, पहन लें आप प्रिंटेड हिजाब। लोग इस पर भी बड़ा इशू खोलते हैं, प्रिंटेड हिजाब है, क्यों है, ये तो हराम है, ये तो वो है, ये दिस है, आपको कौन कहता है कि आप पहने? ये तो उन बेचारों के लिए जिनको परचा रहे हैं, जिनको मोहब्बत होगी। बाज़ लोग सिर्फ प्रिंटेड हिजाब में अपने आप को मुतमइन करते हैं, वो कर लें, थोड़ी देर गुजरेगी, खुद अंदर से फितरत बोलती है कि अच्छा ये तो मेरा स्काफ ही इतना प्यारा है, अब तो लोग और ही देख रहे हैं, मेरे तो बाय पे इतने मोती सारे लग गए हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। यकीन करें आप शुरू करें, आप थर्ड ग्रेड का पर्दा शुरू कर लें, एक वक्त आएगा आप चलते चलते अल्लाह की तौफीक से आपको अपने ऊपर बड़ी बड़ी चादरें डालना भी मुश्किल नहीं लगेगा। आप ढीले अबाय में भी अपने कपड़े को खींचती रहेंगी और देखेंगी कि आप कोई मुझे अबाय में भी तो चलता हुआ देख नहीं रहा, ये खुद ब खुद होता है। फितरत ना मसख करें, चिड़ ना चढ़ाएं और पूछें ना। हम एक और इशू जो खोल लेते हैं कि जी बस मैं करने लगी हूँ, बस मुझे रोक लें, ये स्टाइल होता है, बस कर ले खुदा के लिए मुझे मना कर दें, और जाके उस्ताद को कह देंगे, टीचर्स को, जो बेचारे कभी कुछ कहते ही नहीं, दिल तो बड़ा चाहता है पर वो मियाँ तो पता नहीं क्या कर देंगे, और वो जी तलाक हो जाती है उससे। तो बताएं फिर बेपर्द औरतों को तलाक क्यों होती है? ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट थिंग मैं आप सबको ये कहूँगी, आप जिस दर्जे में भी हैं, नंबर एक अपने लिए बेहतरीन टारगेट रखें, अल्लाह से तौफीक मांगें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां कर दे उस काम को करने की। फिर जो कोई कर रहा है कभी किसी पे तनकीद ना करें, बास कहते हैं लो जी ये अबायों में और ही प्यारी लगती हैं, एक औरत कपड़े उतार के जो प्यारी लग रही है तो आप कपड़े पहन के अच्छी लगे। फिर कहते हैं जी देखो इनको तो आखिर आई हुई है, 5-5 हज़ार का अबाया पहनती हैं। तो भाई जो एक शादी की रात के लिए, एक दिन के लिए 20 हज़ार का जोड़ा बना सकता है तो क्या 5 हज़ार का अबाया ना पहने। अब आपके अच्छा जी सवाल बताएं क्या डिज़ाइनर्स के अबाए पहन सकते हैं, भाई बात सुने आप पहन क्या रहे हैं। अगर आप एक सिंपल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अमूमन जो कपड़े महंगे होते हैं उसका कपड़ा बहुत अच्छा होता है और वो बहुत चमक चमक भी नहीं होते, आप अगर एक अबाया लेते हैं जो आपको लग रहा है डिसेंट है, आप एक अच्छे मर्द की बीवी हैं, आप डॉक्टर की बीवी हैं, आपको पार्टी में जाना है, लोग देखते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। इसके बरक्स आप 1000 से 200 रुपये का अबाया लें और उस पर चमकते चमकते छम 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 करते सितारे हैं, बस कहते हैं नहीं जी वो अबाया पहनना है, बुरका पहनना है तो शटल कॉक पहनो, हमारी दादी पहनती थी। नहीं, यकीन करें आप जाके देखें कि आज उस शटल कॉक का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं यहाँ बैठ के वो बताना नहीं चाहती कि बाज लोगों के कमेंट से बातें हैं तो बाज उसके आगे जो जाली है उसको जानवर के पिंजरे से टैली करके दिखाते हैं कि ये देखो ये मुसलमानों ने औरतों को जालियों में बंद किया हुआ है। बाज उनके शटल कॉक को बाथरूम की शक्ल का बना के दिखाते हैं कि ये अंदर इन्होंने किन को छुपाया हुआ है। असल तो बात है कि हमने खुद मजाक उड़ाया। जब हम किसी चीज़ को ऐसे नॉन सीरियसली लेते हैं तो दूसरे भी ऐसे ले लेंगे। अल्लाह के लिए करें, अल्लाह का तकवा इख्तियार करें, लोगों की नज़रों से कभी ना देखें। फिर आप देखें कि हर औरत के अंदर एक डिफरेंट सोच होती है, मिजाज है। कुछ लोगों को पहनना ओढ़ना अच्छा लगता है, वो सचती हैं, संवरती हैं, उनका दिल चाहता है। अगर वो पर्दे की तरफ आ जुड़ रही हैं तो अगर वो थोड़े सजे हुए बुरके पहनती हैं आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ चली जाएंगी, अल्लाह छुड़वा देगा उनसे। कुछ औरतें उनको शौक ही नहीं होता पहनने उड़ने का, जिसको हमारी जबान में कहते हैं ना ये तो बूढ़ी रूह है, जवानी में भी कुछ नहीं पहनती थी, वो शादी के बाद भी कुछ नहीं पहन रही, अब 40-50 में नहीं पहन रही। अब आप बताएं जो सिर्फ अल्लाह के लिए अपनी ब्यूटी को छुपाती है, ज्यादा सवाब किसको होगा, उस बूढ़ी रूह को कि उसको होगा जिसको पहनने उड़ने का शौक है। जो जितना अल्लाह के लिए छोड़ेगा, एक औरत है वो बिल्कुल वाजबी शक्ल की है, नॉर्मल सारे ऐसे ही होते हैं, या एक बहुत ही कम है उसको लगता है मुझे कोई नहीं देखता। एक औरत है जो वाकई मर्द तो मर्द औरतें भी देखने लग जाए, अब बताएं कौन अपने आप को छुपाएगी तो ज्यादा जरा। जैसे आप देखें ना कि यहाँ अगर आप प्लास्टिक का एक टुकड़ा रख दें हम में से किसी को पता ही नहीं चलेगा पड़ा हुआ है, और अगर हम यहाँ कोई नगीना रख दें तो चमकते हुए खुश आएगी ना, हर एक मुड़ के देखेगा। अल्लाह ने कुछ को वाकई ऐसी खूबसूरतियाँ दी हैं तो उसके नतीजे में फिर क्या होता है कि वो ज़्यादा दिखती है। ऐसी औरतों को तो ज़्यादा छुपाना चाहिए अपने आप को, क्योंकि हर एक की गंदी नज़रें होंगी। हम सफ़ेद कपड़े की जितनी केयर करते हैं कि आप डार्क कलर के प्रिंटेड की भी उतनी केयर करते हैं, तो ये मिसाल ले लें। तो लिहाजा औरत अपने आप को छुपाएगी ना तो मुआशरे के अंदर अमन और चैन आएगा। ये कभी नहीं हो सकता कि आप खुद औरत को खुला करके पेश कर दें और कहें कि वो मुआशरा जब वो खूबसूरत हो जाए, ऐसा नहीं होता। अब एक और छोटा सा मसला पेश कर ही दूँ ताकि फिर कम अज़ कम आपके जहनों के सवाल पूरे हो जाएँ। एक और बात है और वो क्या है कि औरत चूँकि पर्दा करने लग गई है लिहाजा हार सिंगार छोड़ दे और जहाँ जाए महफिल में वो सर से पाँव तक उसी काले अबाए में बैठी रहे जो रोज़ पहनने की वजह से उससे इतनी स्मेल आए कि दूसरे लोग उसके पास ना आए। क्या ये सही तरीका कर रहा है? क्या औरत नन बन जाए? याद रखें कि अल्लाह ने कहा, पढ़ेंगे सूरह ज़ुख़रफ़ में, कि वो औरत जो जेवरात में पलती है। मैं तो कहती हूँ सिर्फ जेवर पहनने की दलील या आयत ही बड़ी है कि अल्लाह आपने कह दिया जेवर पहनती है तो हम कैसे ना पहने, और हम क्यों आराम करें सिर्फ लोगों की बातों के डर से। तो मुख्तार तरीक़ाकार क्या है, आप इसको इस एंगल से देखिए कि जब हम गैर फितरी पाबंदियाँ लगाते हैं ना वो ज़्यादा दिन नहीं निपती। शौक में आके कोई 4 दिन कर लेगा ना, बाद में फिर देखेगा दोस्तों सहेलियों को पहने ओढ़े, फिर उसको शर्म आएगी। पहली बात ये नोट कर लें कि औरत ने ये जो कुछ भी करना है ये उसका वहाँ है जहाँ फितना है। अल्लाह ताला ने अगली आयत में पूरी लिस्ट बता दी है कि कहाँ ब्यूटी नहीं शो करनी। इसको देखें फिर आगे इंशाल्लाह इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और जो असल में घर से बाहर के पर्दे की बात है ना, वो सूरत अल-अहज़ाब में आएगी। सूरत नूर में हमने पढ़ा लिटरली ड्रेस कोड की बात थी, क्या पहने, यानी अकेले में भी, घर में भी, घर वालों के साथ। यहाँ सूरत नूर में घर के अंदर, फैमिली के अंदर रहने वाले लोगों में, रिश्तेदारों में कैसा पर्दा होगा, और इंशाल्लाह सूरत अल-अहज़ाब में फिर आउटडोर कि वहाँ बाहर जाते हुए औरत क्या करे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबूलतिहिन्ना, और ना जाहिर करें अपनी खूबसूरती मगर अपने शोहरों के लिए। शोहर है वो हस्ती जो किसी औरत के हुसन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। आप ये कह सकते हैं कि औरत खुद भी अपनी ब्यूटी को एंजॉय इतना नहीं कर सकती जो उतना उसका शौहर कर सकता है। अगर मैं ये बात कह दूं तो शायद गलत ना हो कि औरत को जितनी खूबसूरती दी गई है ना वो सारी की सारी उसका शौहर का हक है। जैसे हमें ज़रूरत की चीज़ें दी हुई हैं ना, आंखें देखने के लिए दी हैं, कान सुनने के लिए दी हैं, औरत को हुसन उसके शौहर की खुशी के लिए दिया है। क्योंकि जो ईमान वाले मर्द होते हैं, जो यहुद मिन अबसारिहिम वाले मर्द होते हैं, फिर उनके अंदर जो जिनसी जज्बात हैं, जो उनके अंदर एथेटिक सेंस है उनकी, जो उनके अंदर ब्यूटी की बात है, वो कहाँ से पूरी करेंगे? वो अपनी बीवियों से करेंगे। जब औरत सबसे छुपती है और शौहर के लिए खुलती है, ऐसी औरत मर्द के लिए बेस्ट सेटिस्फेक्शन वाली होती है। मर्द की मर्दानगी को ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि मेरी बीवी को सिर्फ मैं देखूं, दूसरे ना देखें। मैं पूरे शऊर से कह सकती हूँ कि हम औरतें अगर अपना एटीट्यूड बदल लेना तो बिगड़े से बिगड़ा हुआ मर्द भी कभी ये नहीं पसंद करेगा कि उसकी बीवी बेपर्द हो। वो तो एक झूठी शान बनाई हुई है ना। फितरतन हर मर्द चाहता है कि मेरी बीवी को सिर्फ मैं देखूं। तो शौहर के साथ जीनत का इजहार हो सकता है, हर तरह की जीनत, जितनी भी चीज़ों को हमने डिस्कस किया पीछे, और ये करना पसंदीदा है। आप जो शौहर के लिए जीनत करती हैं ना, उस वक्त के आपके अमल को इबादत लिखा जाता है। और कितनी है जो शौहरों के लिए करती हैं ये बताएं, आप ही बता दें। औरों को तो चढ़े, शौहर बेचारे जब आते हैं उस वक्त तो हमारा हाल फिर मासी वाला बन चुका होता है। लिपस्टिक लगाएं तो पूछते हैं, बेगम कहाँ जा रही हैं आप, अम्मी आप कहाँ जा रही हैं, आज आपने इतने अच्छे कपड़े पहन लिए। और बाहर जाने से पहले सजते हैं और गाड़ी घर में आती गाड़ी में जेवर उतार के पर्स में रख लेते हैं। अब क्या उसने ही देखना है, उन्होंने तो कभी तारीफ ही नहीं की। मर्द जब घर आते हैं तो हमारा क्या हाल होता है? वो एडवर्टाइजमेंट में देख रहे हैं इतनी प्यारी बेगम जो खाना पकाती है तो साथ लहराती है, आपके मियाँ क्यों ना फिल्में देखें, वो क्यों ना वो फिर जाके ड्रामों की हीरोइनों को देखें और ढूंढें, और वो अपने नसीब पे क्यों ना रोएं कि हमें कैसी बेगम मिली और अब तो और कुरान पढ़ रही है। यकीन करें आप इस कुरान को बदनाम ना करिएगा। मैं तो सबको ये साफ कहती हूँ कि आप कुरान पढ़ रहे हैं ना, आप अपने शौहरों के दिल की रानी बन जाएं, बने उनके लिए तितली, बने उनके लिए आप हूरपरी, जहां तक कर सकें। मायूब नहीं कह रही बातें, उम्र का हालात का तकाजा रखे और जो पहले करते थे उससे जरा मिलता वही करें। बहरहाल आप देखिए कि मैं कहती हूँ जो इस्लाम खूबसूरत ताल्लुकात का तस्वुर देता है ना, वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। और जितना एक दीनदार शौहर अपनी बीवी के लिए फेयर और सिंसियर हो सकता है, उतना कोई मर्द नहीं हो सकता। लोगों को सिर्फ ये पता चल जाए ना, तो वो सिर्फ इसलिए भी दीनदार मर्द ढूंढे अपनी बेटियों के लिए और दीनदार लड़कियां ढूंढे अपने बेटों के लिए कि हमारे घर जन्नत बन जाएंगे। आप करें उसके लिए, एक अच्छी चीज़ होती है। हमारी ये रिवायत रही पिछले हमारी नानियाँ दादियों के वक्त में, देखे शाम के वक्त जब मर्दों के घर आने का वक्त होता था, ख्वातीन उस वक्त साफ कपड़े पहनती थी, कंघी करती थी, हर एक अपने हिसाब से जितना तरीके से कर सकता था। आप फील करें, अब जब से औरत घर से बाहर निकली है ना, ये औरत की सोशलाइजिंग बढ़ गई, पार्टियां बढ़ गई, वीकेंड उसके बाहर, डेज उसके बाहर, मॉल्स में और ज्वेलर्स में, शाम को वो भी थकी हुई आई, मियाँ भी थका आया। आप इन बदलते हुए तरीकों को देखा करें कि कैसे शैतान हमारे घरों से असल खूबसूरती और सत खत्म करता जा रहा है। फिर वही नौबत आती है कि 14 फरवरी का इंतज़ार करो ताकि वैलेंटाइन फूल दे के या गिफ्ट दे के खुश कर लेंगे, और एक मदर डे आएगा तो माँ को जाके मिल लाएंगे, फिर सेलिब्रेशन रह जाती है। इस्लाम जो है ना, ये डे सेलिब्रेशन से ज़्यादा आपको मोमेंट सेलिब्रेशन की तरफ लेके आता है। एक हकीकी कपल जो वाकई दीन की रूह को समझता है, उसका एक एक मोमेंट जो होता है ये वैलेंटाइन डे, तो क्या नाम भी नहीं लेना चाहिए, इतना गंदा लफ्ज़ लगता है जब से उसकी हकीकत पता चली है, उनका एक एक लम्हा खुशी का। हमारे यहाँ कहते हैं शादी के शुरू के दिन है, ज़रा इनको खुश होने दो, ये चाओ के दिन है। नहीं, चाओ वो होते हैं जो सारी ज़िंदगी रहे। शादी के शुरू के दिन तो रोने धोने के ही होते हैं, हर चीज़ नहीं है, रो ही रहे हैं, गम है, कभी बर्तन टूट गया, कभी चादर ठीक नहीं हुई थी, कभी माँ याद आ गई, कभी सहेली याद आई। असल आप इंजॉय करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ को जब आप बिल्कुल अपने शौहर के मिजाज को समझते हैं। शुरू में तो गलतियाँ ही करते हैं इंसान, बाद में समझ आते हैं। तो लिहाजा औरत अपने शौहर के सामने जैसी भी जीनत अपनी इख्तियार करना चाहे करे। हमारे यहाँ इसमें कुछ इंतहा है जो सिर्फ इसलाह की खातिर करना मुनासिब समझूंगी, कि शौहर के लिए औरत का सर से लेके पाँव तक हर चीज़ उसके लिए वो देखना जायज़ है। बस लोग एक हदीस बयान करते हैं जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेके बड़े पर्सनल मैटर को नबी सल्लम के करते हैं, और ख़ुलासा उसका यह है कि अगर ताल्लुक़ कायम करना भी पड़े तो उस वक़्त भी मर्द बीवी को नहीं देख सकता। ये ज़ईफ़ रिवायतें हैं और ये गैर फितरी बातें हैं। ऐसी चीज़ें जब हम आम कर देते हैं और दीन का ये वर्जन पेश करते हैं तो फिर उसके बाद उसका रिएक्शन दूसरी तरफ होता है। मर्द बीवी को हर तरह से देख सकता है। आप बाहर नहीं पहन सकते फैंसी कपड़े, इस किस्म के जो आपको लगता है वेस्टर्नाइज किस्म के कपड़े, आप पहनिए, घर के अंदर पहनिए, करें खुश। बाहर जो इतनी चमकती दमकती तस्वीरों को देखते हैं तो क्या फिर घर में आके अगर उनको वो चीज़ मिल जाएगी तो उसको किसी और को देखने की ज़रूरत पड़ेगी? अब यहाँ सवाल का जवाब अभी खुद भी दे दूँ कि आप क्या वेस्टर्न कपड़े पहन सकते हैं? कोई मिसाल है कि मिनी स्कर्ट्स या जो भी स्लीवलेस शर्ट से पहन सकते हैं आप अपने घर में, आपका शौहर है आप पहन ले, कोई मना नहीं करता आपको। टेस्ट चेंज करने के लिए, माहौल को खुशगवार करने के लिए, वक्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक, मौका देख के आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप दीन को इस तरह शिद्दत पे ले जाते हैं कि इन चीज़ों को कंडेम करके इस तरह का दीन पेश करते हैं तो वो चीज़ फिर इंसान के लिए बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होती। फिर इसके बाद आप देखिए कि यहाँ शौहर की बात के बाद जो अगली बात है वह औ आबा इहिना। यहाँ से एक छोटा सा जुमला नोट कर लीजिए कि तरतीब मलहूस रहेगी। औरत अपनी जीनत कहाँ, किस हद तक, किससे खोल सकती है, वही तरतीब होगी जो यहाँ कुरान में आ गई। सबसे ज़्यादा शौहर से, फिर दूसरे दर्जे पे बाप से, फिर तीसरे दर्जे पे व आबा इबूलतिहिन्ना, शौहर के बाप यानी सुसर। सुसर जो होता है उसके साथ किस तरह का ताल्लुक कायम हो जाता है? जैसे अपना बाप है। आप उस मर्द के निकाह में रहें या खुदा ना खास्ता तलाक हो जाए, आप निकाह में रहें और उस मर्द का इंतकाल हो जाए यानी बेवगी हो जाए या तलाक, दोनों सूरतों में जो सुसर है ना ये अबदी महरम होता है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो लिस्ट हमारे सामने अब आ रही है ना ये अबदी महरमों की है, ऑलवेज फॉर एवर, ये कभी भी चेंज नहीं होते। कुछ महरम है वो चेंज हो जाते हैं जिसका तस्करा बाद में करेंगे, ठीक है। से अगली चीज़ औ अबना इहिन्ना, और बेटे, अपने बेटे, व अबना इबूलतिहिन्ना, शोहरों के बेटे, मुराद है सौतेले बेटे। बेटों में पोते, पड़पोते, नवासे सारे आ जाते हैं, सगे भी आ जाते हैं, सौतेले भी आ जाते हैं और वो भी हमेशा के लिए महरम होते हैं। वह इख्वानिहिन्ना, अब आई है भाइयों की बारी। नोट कीजिएगा, ये बड़ा बारीक नुक्ता है इसलिए यहीं रोक के बता दूं कि बाप का तذکرہ आया शौहर के बाद और भाई का तذکرہ कहाँ जाके आ रहा है? नीचे। यहाँ से हिकमत समझिए कि आप अपने बेटे की निस्बत भाई से थोड़ा फासला रखेंगी, क्योंकि अमूमन भाइयों और बहनों की उम्रों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता और बेटे और माँ की उम्र में फ़र्क होता है। बेटा माँ को उस शहवत से नहीं देख सकता जिससे भाई देखेगा। जिस उम्र में बहन जवान है भाई भी जवान हो सकता है, तो भाइयों से डिस्टेंस प्लेस। हर महरम रिश्ते से एक जैसा ताल्लुक नहीं होगा। फिर उसके बाद अच्छा, भाइयों में भी सारे वही भाई आ गए जो सगे सौतेले आते हैं। औ बनी इख्वानिहिन्ना, भाइयों के बेटे भतीजे, औ बनी अखवातिहिन्ना, और बहनों के बेटे यानी भांजे। यहाँ तक तो मर्द थे, अब आगे बीच में आई बात औ निसाइहिन्ना, और अपने मेल जोल की औरतें। निसाइहिन्ना पे फिर मुफस्सरीन को थोड़ा सा शुबा है। कुछ कहते हैं कि अपनी जैसी औरतें, क्यों ये क्यों नहीं कह दिया औ निसाइन, औरतें सारी औरतें, हिन्ना से फिर यहाँ क्या मुराद है? इसमें से नंबर एक, हुन्ना से मुराद लिया गया कि मुसलमान औरतें। जो मुफस्सरीन कहते हैं कि हुन्ना से मुराद जहाँ मुसलमान औरतें, तो बस हर गैर मुस्लिम औरत से भी पर्दा वैसे ही करो जैसे मर्दों से करते हो, जो बिल्कुल बात अकल के भी खिलाफ है, शरा के भी खिलाफ लगती है। दूसरा गिरोह है वो कहते हैं, अच्छा इस सूरत में वो कहते हैं हर औरत, चाहे वो ज़िमी हो यानी जो किसी मुल्क में रह रही है अकलियतों की सूरत में, वो भी और दूसरी भी मना है इसमें। और इस पे एक दलील भी लाते हैं, वाक़िया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का, अबू उबैदा को उन्होंने लिखा, मैंने सुना है कि मुसलमानों की बाज़ औरतें गैर मुस्लिम औरतों के साथ हमामों में जाने लगी हैं। हमाम को आज के दौर में आप स्विमिंग पूल कह लें, आज के स्विमिंग पूल। हालांकि जो औरत अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान रखती हो, इसके लिए हलाल नहीं कि इसके जिस्म पर इसके अहले मिल्लत के सिवा किसी और की नज़र पड़े। ये ख़त जब हज़रत अबू उबैदा को मिला तो वो एकदम घबरा उठे और कहने लगे, खुदाया जो मुसलमान औरत महज गोरी होने के लिए इन हमामों में जाए, इसका मुँह आखरत में काला हो जाए। ये इब्ने जरीर की रिवायत है बहकी की, इमाम इब्ने कसीर ने भी इसको नकल किया। तो बहरहाल एक राय ये मौजूद है कि हर तरह की औरत से, तो इसके हिसाब से तो आप किसी स्विमिंग पूल में भी नहीं जा सकते और जहाँ की दूसरी औरतें इस तरह की मौजूद हैं। दूसरे कहते हैं कि नहीं, इससे मुराद लिटरली औरतें हैं। अपनी औरतों के सामने भी औरत अपनी चेहरे वगैरह के सिवा कुछ नहीं खोल सकती। तो फिर उसकी दलील यह कि फिर निसाए हिंद ना क्यों आया, सिर्फ निसा होना चाहिए था। तीसरी राय जो इंशाल्लाह ताला सबसे दुरुस्त और बैलेंस्ड है, और वो क्या है, अपने जैसी औरतें, चाहे मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है, शरीफ औरतें, मेल जोल की औरतें, जानी बूझी काम करने वाली, जिनको पता है कि आप कौन है मैं कौन हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ जाती है घरों में काम करने की कराने की, बाहया औरतें, अहले किताब में भी होती हैं अपनों में भी होती हैं, इन सब से तो दिखेगी। लेकिन जहाँ चाहे कोई मुसलमान ही औरत क्यों ना हो, गैर मुस्लिम हो, कि जिसके मर्दों से ताल्लुकात हैं, बसारी किस्म की औरतें जो औरतों के हुस्न को पेश करती हैं दूसरों के सामने, या मर्दों को घर में जाके बताती हैं फलां तो इतनी खूबसूरत है, तो हर वो औरत जो अपनी यानी किसी दूसरी औरत का हुस्न अपने मर्दों से पेश करती है, उससे पर्दा कर लो। और आपको पता है कि ये कितने गुर की बात अल्लाह के नबी ने सिखाई, फरमाया कि कोई औरत अपने शौहर को अपनी सहेली की तारीफें ना करे, वो तो इतनी प्यारी है वैसी है, क्यों, क्या होगा, मर्द के दिल में कशिश पैदा होगी। हम सब खवातीन को इस मामले में बहुत मुहतात रहना चाहिए, हमारी ये छिछोरी हरकतें हमारे दीन का सारा रस निचोड़ लेती हैं। आपका शौहर है वो, उसका तो कुछ नहीं लगता, कोशिश ही ना किया करें किसी दूसरे की बात करें। यकीन करें, अगर आप फितनों से बचना चाहते हैं ना, हर तरह के फितने से, तो आप अपने घर के मर्दों के साथ यहाँ की बाहर की सहेलियों की बातें ना करें, वरना पता क्या होगा, एक वक्त आता है मर्द मज़ा लेके सुन लेते हैं, अच्छा और सुनाओ फिर और क्या, दूसरा कोई वक्त आएगा ज़रूर आपको उसी बात का ताना देंगे, वही बात जो आज आपकी मीठी बनी थी वो कल आपके लिए ताना बनेंगे, और आप देखेंगे कि उससे बाज़ दफ़ा आप बहुत बड़ी खैर और नेकी से भी महरूम हो जाते हैं। बाज़ लोग सिर्फ इसलिए दीन के काम नहीं कर पाते कि उनके अंदर ये अख़लाक़ी कमियाँ होती हैं। तो लिहाजा खुलासा क्या है, निसाए हिन्ना में शरीफ औरतों के सामने रहो, दूसरी के सामने ना रहो। बाज़ औरतें घर घर जाती हैं, अब आप देखिए कि औरतों के सामने औरतों के आने की कैफियत कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में फिर मुख्तलिफ राय हैं। बाज़ कहते हैं कि जो मर्द का मर्द से सदर है, नाव से घुटने तक, इतना ही औरत का औरत से है। और ये बात स्ट्रॉन्ग है कि आम हालात में औरत की नाव से घुटनों तक का हिस्सा कोई औरत भी औरत का नहीं देख सकती, इल्ला कोई मजबूरी जिसमें डिलीवरी है, बीमारी है, कोई ऐसी मजबूरी, हर बंदा अपनी मजबूरी खुद समझता है। इसके अलावा ये हिस्से तो औरत किसी के नहीं देख सकती। बाज़ कहते हैं नहीं, सीना भी इसमें आता है, यानी चेस्ट तक, यानी गर्दन से लेके घुटनों तक लेते हैं। फिर उसमें थोड़ी सी रुख्सत दी जाती है कि इतना है, लेकिन जैसे बच्चे को दूध पिलाते वक्त अगर किसी वक्त थोड़ा औरत का हिस्सा खुल जाता है या किसी और सूरत में, तो वो खोल सकती है। लेकिन इनमें देखें कि वही मैं बात कहूँगी कि सबसे बेस्ट थिंग वही है कि औरत का औरत से वही है जो मर्द का मर्द से है, ये नीचे का हिस्सा तो किसी सूरत नहीं खुलना चाहिए। बाज़ दफ़ा वैक्सिंग के नाम पे, बाज़ दफ़ा मसाज के नाम पे, बाज़ दफ़ा सिर्फ शावर के नाम पे, और पता नहीं क्या कुछ चीज़ें आजकल निकली हुई हैं, आप पढ़ें देखें तो कितना कुछ लोग अपने आप को सजाते संवारते हैं, कभी जिकोजी में है तो कभी कहीं वो पार्लर्स में है और कहीं कुछ, तो इनसे अवॉइड करें, इसी से तो फिर ये खराबियां फैल रही हैं जो दुनिया में, बाकी रहेगी मजबूरी तो अल्लाह ताला उसको माफ़ करेगा, जहां तक आप बच सके उस पर बचें। औरत को चाहिए भी ये कि अगर अपनी इलाज के सिलसिले में भी उसको करना पड़े तो उसको कोई ऐसा ही अरेंज करना चाहिए कि जिसमें उसका पर्दा ना खुले। फिर आगे देखते हैं, वमा मलकत ईमानुहुन्ना, और अपने ममलूक, औरतों के ममलूक कौन होते हैं, उनके ग़ुलाम होते हैं। आज के दौर में तो ये चीज़ है नहीं, लेकिन पहले दौर में होते थे। तो ग़ुलाम कौन सा, जो ग़ुलाम हो, समझिएगा, ये मुलाजिम नहीं है, इसे मराज कुक नहीं है, ड्राइवर नहीं है। बाज़ कहते देखो कुरान में जो आ गया कि अपने ममलूकों से तुम पर्दा ना करो, वो तुम्हारे महरम है, नहीं, ग़ुलाम जिसको वाकई पैसे लेके ख़रीदा जाए। ग़ुलामी पे बात बहुत डिटेल से अगली आयतों में आने वाली है, हम वहाँ करेंगे, लेकिन आज ये चीज़ है नहीं, लेकिन आप इसको ये समझें कि इससे मुराद ग़ुलाम नहीं है। अवितबईन गैर उलिल इरबति मिन अर्रिजाल, या वो मर्द जो औरतों से किसी किस्म की गरज ना रखते हों, हैं ज़ेरे दस्त, ये कौन है, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील है कि कोई ऐसा मर्द जो घर के साथ लगा हुआ है, हर वक्त उसका मामला है। मैं इस आयत की तफसीर मुख्तलिफ मुफस्सरीन ही की रोशनी में आपको बता देती हूँ कि पुराने दौर में लोगों ने इससे कौन से लोग मुराद लिया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं इससे मुराद है सीधा सादा बुद्धू, अरबी में इसको मुगफ़ल कहते हैं, गाफिल, जो औरतों से दिलचस्पी ना रखता हो, होते हैं ना ऐसे मुलाजिम सिधाड़ किस्म के, बुद्धू टाइप के, उससे आप अपने आप को अलग कर लें। कतादा कहते हैं ऐसा दस्ते नगर जो पेट की रोटी पालने के लिए तुम्हारे साथ लगा हुआ है, यानी जिसके पेट में रोटी नहीं है उसकी और चीज़ों की तरफ तवज्जो कहाँ जानी है, भूखा। मुजाहिद कहते हैं अबला जो रोटी चाहता है और औरतों का तालिब नहीं है। एक मुफसर शाबी वो कहते हैं वो जो साहिब खाना का ताबे नगर हो और इसकी इतनी हिम्मत ही ना हो कि उनकी औरतों पर निगाह डाल सके। इब्ने जैद कहते हैं जो किसी ख़ानदान के साथ लगा रहे हत्ता के गोया कि इस घर का एक फ़र्द ही बन चुका हो, इसी घर में पला बड़ा, जो घर की औरतों पर निगाह ना रखे ना हिम्मत करे और इनके साथ सिर्फ इसलिए लगा रहे कि मुझे रोटी मिलती रहे। और इसी तरह ताऊस और जोहरी हैं, वो कहते हैं इससे मुराद बेवकूफ़ आदमी है जिसमें ना औरतों की रग़बत हो ना इसकी हिम्मत हो। अब ये देख लीजिए कि कौन सा शख्स है, गैरी उलिल इरबति मिन अर्रिजाल। अब इसके अंदर एक और नाम भी आता है और वो हैं हिजड़े, जिसको हम थर्ड सेक्स कहते हैं। ना औरत ना मर्द दोनों की खूबियाँ होती हैं। इसके बारे में भी हुक्म समझें, हमारे यहाँ तो अमूमन घरों में आते हैं तो नाचना नुचना और सब कुछ औरतों के सामने होता है, हालांकि इसके बारे में मैं आपको एक वाक्य सुना देती हूँ। हज़रत आयशा और उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मदीना में मुहन्नस था, इसको मुहन्नस कहते हैं अरबी में, उर्दू में हिजड़ा कहते हैं। कहती हैं कि अज़वाजे मुतहरात और दूसरी औरतें गैर उलिल इरबा में शुमार करते हुए अपने हाँ आने देती कि इसमें तो कोई ऐसे जज्बात नहीं है। एक रोज़ जब नबी सल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा के पास तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा कि उम्मे सलमा के भाई अब्दुल्ला बिन उमैया से एक मुहन्नस बातें कर रहा था, वही वाला। वो कह रहा था कल अगर ताइफ फतह हो गया तो गीलान सकफ़ी की बेटी बादिया को हासिल किए बगैर न रहना, और उसने उसके जिस्म बल्कि उसके पोशीदा अज़ा तक की सिफत बयान कर दी। अल्लाह के नबी ने यह बातें सुनी, फरमाया खुदा के दुश्मन तूने इसमें नज़रें गाड़ दी। फिर आपने हुक्म दिया कि अब इससे पर्दा करो और आइंदा ये घरों में ना आने पाए। फिर इसके बाद आपने उसको मदीना से निकाल दिया और दूसरों को भी घरों में आने से मना कर दिया। कहा कि ये घर घर जाते हैं, वहाँ जाके औरतों के किस्से बयान करते हैं। फिर अगली चीज़ है अवितफ़ लिल्लज़ीन अलम यस्खरु अला औरातिन निसा, और वो बच्चे जो भी औरतों की छुपी हुई चीज़ों से आगाह नहीं हुए। अन प्यूबर्टी की एज है भी जिनकी, छोटे लड़के अमूमन 10 से 12 साल होते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी बात कहूँगी कि बच्चे तो छोटे थे, इस्लाम ने ये नहीं कहा बच्चे, उम्र लिख दी जाती कि किड्स लिख दिया जाता। यहाँ जो काबिले गौर बात है वो क्या है कि लम यज़हरु अला औरातिन निसा, औरतों के पोशीदा मामलों से अभी आगाह नहीं हुए। आप बताइए कि आज के दौर में किस उम्र में बच्चों को औरतों के मामलात की खबर हो जाती है। सेक्स एजुकेशन की तरफ इशारा है। आज के दौर में जहाँ शैतान ने और काम करवाए वहाँ ये भी कराया कि छोटे बच्चों को पकड़कर वो इस किस्म की चीज़ें दिखा और बता देते हैं जिसकी अभी उनको ज़रूरत नहीं होती। तो क्या वो फिर इस मद में आगे कि जिनके ऊपर लम यस्खर वला औरातिन निसा, ये इंतहाई गैर फितरी बात है। बच्चों को ऐसी चीज़ें देना, इस तरह की चीज़ें देना, ये कभी भी अक्लमंदी का तकाजा नहीं है। और इसके ऊपर इतनी रिपोर्ट्स मिलती हैं कि पढ़ते हुए भी हया आती है कि कुछ जगहों में जब यहाँ ऐसी तालीम दी गई तो बाद में बच्चे फिर वही हरकतें करते हुए पाए गए। देखिए कि बच्चे को नहीं पता होता कि औरत का जिस्म कैसा है, मर्द का कैसा है। आप डायग्राम्स के जरिए, पावर पॉइंट्स के जरिए जब औरतों के हिस्से दिखा देते हैं तो अब एक बच्चा जो 8-9 साल का क्लास में बैठा हुआ है, ज़रूर उसके दिल में ख्याल आएगा ना कि ये लड़की जो मेरे साथ बैठी है ये कैसी है, मैं इसको भी देखूँ। और उससे फिर गंदगी हुई और उससे फिर आपने वो आवाज़ें सुन ली होंगी कि अब ये हक समझ कर मुतालबा हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि हाई स्कूलों में ऐसी जगह बनाई जाएँ कि जहाँ जाके बच्चे बच्चियाँ अपनी जिनसी ज़रूरत पूरी कर सकें, क्योंकि टॉयलेट्स में उनको ये काम करते हुए मुश्किल पेश आती है। ये कई जगह आवाज़ उठ चुकी है वेस्ट में और अब इसके इंतजाम हो रहे हैं और कॉन्डम्स और ऐसी चीज़ें प्रोवाइड तो आम की जाती हैं कि करो जो मर्ज़ी लेकिन प्रेग्नेंट ना होना। तो अल्लाह से दुआ है कि आंखें खोल दे। हम कैसे अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे भेजते हैं, चीज़ आपके हाथ में नहीं। बच्चे को तो सिर्फ कैंडी आप दिखा दें फिर सो जाएं आप, वो ढूंढ के निकाल लेगा। जब तक उसको नहीं पता पड़ी हुई है तभी तक वो बची हुई है। जब आप उस उम्र में जहाँ चारों तरफ ऐसा गलबा हो ऐसी चीज़ें दिखा और बता देते हैं, नतीजा क्या निकलेगा। वला यद्रिब नबी अरजुली हिन्न, और अपने पाँव ना मारती फिरा करो ज़मीन पे। लियो लममा युखफी न मिन ज़ीनती हिन्न, ताकि ज़ाहिर हो जाए वो चीज़ जो उन्होंने छुपा दी थी। पाँव का जेवर, ये कौन सा होता है? किस चीज़ की तरफ इशारा है? देखिए कि यहाँ तो सिर्फ लग रहा है ना जेवर, अल्लाह के नबी सल्लम ने तो इसको जेवरों की झनकार तक नहीं रखा बल्कि इसको आगे रखा। यहाँ मैं वो भी आपको हदीस सुना देती हूँ अभी, यानी यहाँ चलने का अंदाज़ भी बताया जा रहा है। उस दौर में भी था, आज भी होगा, पाँव में औरतें पायल पहनती थी और चलती हैं तो घुंघरुओं की आवाज़ आती हैं। इंतहाई नापसंदीदा आवाज़ है ये। हदीस में आता है कि हर घुंघरू की आवाज़ के साथ एक शैतान होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि नॉन मुस्लिमों की इबादत गाहों में घुंघरू बहुत होते हैं। टैप डांस के बारे में क्या ख्याल है? मुफस्सरीन ने इसी आयत से जो डांस करती हैं औरतें और जो उनके जिस्म हिलते हैं उसको भी साबित किया। पाँव मार मार के ना चलो, लोग कहते हैं कहाँ लिखा है, फलां तो करता है, फलां कल्चर में तो करता है। और हया का इस तरह जनाजा निकला कि जब अब शादियों में हमारे अपने मुसलमान मुल्कों के अंदर ऐसे औरतों के मुजरे होने लगे शादियों के वक्त में भी, कि लोग कहते हैं कि अब हमें बाहर जाके देखने की क्या ज़रूरत है। और बाप भाई देखते हैं और कहते हैं अच्छा डांस करना आ गया। अब ऐसे बाप भी आ गए जो बच्चियों को कहते हैं ज़रा चचा को करके दिखाना, वला यदरिब नबी अर्जुली हिन्ना, पाँव मार मार के मत चलो। और हमने तो चाल पे गाने बना दिए, हमने तो डायलॉग बना दिए चाल के ऊपर का, मत जाहिर करो। अब जैसे चाल से, अब देखिए जिस घुंघरू की आवाज़ से मर्द को पता चलता है एक औरत आ गई है, तो एक ऐसी खामोश आवाज़ भी होती है जो कुरान में इधर तो नहीं लेकिन इसी आयत के साथ अल्लाह के नबी की तफसीर से हमें मिल जाती है, और वो है खुशबू। क्योंकि आप देखिए, आप बैठे काम कर रहे हैं, सोचे एकदम घुंघरू की आवाज़ आई, नज़र उठेगी ना, आपको लगेगा कोई आया है। तो क्या आप काम कर रहे हैं और एकदम खुशबू का भभूका आए और आप उठें देखें तो आपको नहीं पता चलता कोई आया है? परफ्यूम जो है ये खामोश कॉल होती है जो खामोश रहती नहीं है। इस तरह से उंडेल के जब औरतें निकलेंगी कि जिससे बाहर से आने से पहले ही उनको पता चल जाएगा कि अंदर ये सब कुछ मौजूद है, तो आप देखेंगे कि फिर उससे भी ख़राबी आएगी। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, उनकी रिवायत है, अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों में आने से मत मना करो मगर वो खुशबू लगा कर ना आए। अबू दाऊद अहमद की रिवायत है। तो मस्जिद में आने से तो मना ना करो, खुशबू की वजह से बाजारों में जाने दो, ये मतलब होगा। एक औरत को आपने देखा मस्जिद से निकल कर जा रही थी, हज़रत अबू हुरैरा उसके पास से गुजरे, उन्होंने उसे खुशबू सूंघी, उसको रोका, कहा है खुदाए जब्बार की बंदी, गौर कीजिएगा, खुदाए जब्बार, क्या तू मस्जिद से आ रही है? इसने कहा हाँ। बोले मैंने अपने महबूब अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो औरत मस्जिद में खुशबू लगा कर आए उसकी नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि वो घर जाकर गुस्ले जुनाबत ना कर ले। अबू दाऊद इब्ने माजा और अहमद और निसाई की रिवायत है। इससे भी भड़के लफ्ज़ अगली रिवायत में सुन लें, अबू मूसा अलअशरी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो औरत खुशबू लगाकर रास्ते से गुजरे ताकि लोग इसकी खुशबू से लुत्फ़ानंदोज़ हों तो वो भी ऐसी और वैसी है। आपने इसके लिए बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। तिर्मिज़ी अबू दाऊद और निसाई की रिवायत है। बाज़ रिवायतों में आता है कि जहाँ से गुजरी जिसने भी उसकी खुशबू सूंघी वो उसका जिना लिखा जाएगा। तो क्या औरत खुशबू ना लगाए? लगा सकती है। दलील अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरतों को ऐसी खुशबू इस्तेमाल करनी चाहिए जिसका रंग तेज़ हो और बू हल्की हो, यानी औरत रंग लगा सकती है, खुशबू दबी हुई हो, और मर्द ऐसी आरइश कर सकता है कि खुशबू खुली हुई हो लेकिन रंग दबा हो। तो लिहाजा यहाँ से ये चीज़ें मिल गई और सारी बातें कह के फरमाया, वतूबु इलल्लाहि जमीयन अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए मोमिनो तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, तवक्को है कि फला पाओगे। ये असल में पूरे सिस्टम को समझने की दावत दी गई। हम इधर तक तिलावत सुन लेते हैं फिर इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आगे करेंगे। बोझल अहकाम हैं इसलिए वाकई तिलावत सुनने से बंदे का दिल हल्का हो जाता है।
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.